लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेतुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 17 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व संत पापा ने विश्वासों को याद दिलाया कि हमें हमेशा क्षमा करना चाहिए, जैसा कि यीशु ने किया, क्योंकि बेहिसाब करुणा और प्रेम के उनके उदाहरणों पर चलने से हमारे हृदय में शांति बनी रहती है। संत पापा ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित कर कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
Oggi il Vangelo ci parla di perdono. Pietro chiede a Gesù, Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte.
आज का सुसमाचार पाठ क्षमाशीलता के बारे बोलता है। पेत्रुस यीशु से पूछते हैं, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं उससे कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक।
Sette nella Bibbia.
7 बाइबल में एक ऐसी संख्या है जो पूर्णता को दर्शाती है, इसलिए पेत्रुस अपने प्रश्न की धारणाओं में बहुत उदार है। लेकिन यीशु आगे जाते और जवाब देते हैं,
Non ti dico fino a 7.
मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। अर्थात वे उनसे कहते हैं कि जब तुम क्षमा करते हो तो हिसाब मत करो, क्योंकि हर चीज में और हमेशा क्षमा करना अच्छा है। ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर हमारे साथ करते हैं, और जैसा कि पाप मोचक जो ईश्वर की क्षमा प्रकट करते हमेशा क्षमा करने के लिए बुलाए जाते हैं। संत पापा ने कहा,
Io questo lo dico tanto. ai sacerdoti, ai confessori, perdonate sempre.
मैं पुरोहितों और पाप मोचकों से यह कहता हूँ, हमेशा क्षमा करें जैसा ईश्वर क्षमा करते हैं। इसके बाद यीशु इस सच्चाई को एक दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जिसमें संख्या है। एक राजा अर्जी करने पर अपने एक नौकर को 10,000 दिनार माफ कर देता है। यह एक भारी संख्या है जो करीब 200 और 500 टन चांदी के बराबर है। यह कर्ज इतना भारी था कि जीवन भर की कमाई से भी इसे पूरा नहीं किया जा सकता था। फिर भी स्वामी, जो पिता ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, दया करके सारा कर्ज माफ कर देता है। संत पापा ने कहा, यही ईश्वर का हृदय है, वे हमेशा माफ करते हैं, क्योंकि ईश्वर दयालु है। आइए हम इसे ना भूलें, ईश्वर निकट है, दयालु है और कोमल है, यही ईश्वर का तरीका है। सुसमाचार में हम आगे देखते हैं कि उसके बाद यह सेवक, जिसका कर्ज माफ कर दिया गया था, अपने सहसेवक के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता है, जो उससे 100 दिनार का उधारी है। यह कर्ज करीब 3 महीने के वेतन के समान है। मानो यह कहा जा सकता है कि एक दूसरे को माफ करने में कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन यह रकम पिछले रकम की तुलना में बिल्कुल कम है जिसको मालिक ने माफ कर दिया था। संत पापा ने कहा, यीशु का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर बेहिसाब तरीके से क्षमा करते हैं, वे हर सीमा पार करते, वे प्रेम और मुफ्त रूप से कार्य करते हैं। ईश्वर को खरीदा नहीं जा सकता, वे मुफ्त हैं, सब कुछ निर्बाध, हम उनका बदला नहीं चुका सकते। जब हम अपने भाइयों और बहनों को माफ करते हैं, तब हम उन्हीं का अनुकरण करते हैं। इस तरह जो ख्रिस्ते हैं उनके लिए माफ करना कोई विकल्प नहीं बल्कि मौलिक शर्त है। वास्तव में हम में से प्रत्येक जन क्षमा किए गए हैं। ईश्वर ने हमें अपना जीवन दिया है। हम उनकी दया का बदला किसी तरह से भी नहीं चुका सकते। हालांकि उनकी उदारता का साक्ष्य हम दूसरों को क्षमा देकर दे सकते हैं, उनकी गवाही देकर हमारे आसपास नए जीवन के बीज बो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षमाशीलता के बाहर कोई आशा नहीं है, क्षमाशीलता के बाहर कोई शांति नहीं है। क्षमाशीलता वह ऑक्सीजन है जो घृणा से दूषित हवा को शुद्ध कर सकती है। क्षमाशीलता वह औषधि है जो आक्रोश के जहर को ठीक करता है। यह क्रोध को शांत करने और समाज को दूषित करने वाले हृदय की कई बीमारियों को ठीक करने का तरीका है। तब संत पापा ने चिंतन हेतु प्रेरित करते हुए कहा, आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे ईश्वर से अपार क्षमाशीलता का वरदान मिला है? क्या मुझे यह जानकर खुशी होती है कि जब मैं गिरता हूँ तो वे मुझे माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तब भी जब दूसरे माफ नहीं करते और जब मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाता, वे माफ कर देते हैं, लेकिन क्या मुझे विश्वास है कि वे माफ कर सकते हैं? और फिर क्या मैं जानता हूँ कि उन लोगों को कैसे माफ करना है जिन्होंने मुझे ठेस पहुँचाई है? इस संबंध में संत पापा ने एक अभ्यास का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं आपके सामने एक छोटा अभ्यास प्रस्तावित करना चाहता हूँ। आइए अब हम में से प्रत्येक जन उस व्यक्ति के बारे में सोचने का प्रयत्न करें जिसने हमें चोट पहुँचाई है और ईश्वर से उन्हें माफ करने की शक्ति मांगें। प्रभु के प्रेम के लिए उन्हें क्षमा करें। संत पापा ने कहा कि इससे हमारा भला होगा, हमारे दिलों में शांति बहाल होगी। क्या मैं विश्वास करता हूँ कि वे माफ कर देते हैं? तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा,
मरिया माद्रे दे मिसेरिकोर्डिया ci aiuti ad accogliere la grazia di Dio e a perdonarci gli uni agli altri.
ईश्वर की माता मरियम हमें ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने और एक दूसरे को क्षमा करने में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunc abit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने यूक्रेन के प्रताड़ित लोगों के लिए शांति की अपील की और भूमध्य सागर क्षेत्र की बैठक के समापन के लिए मर्सिले की अपनी आगामी दो दिवसीय प्रेरित यात्रा हेतु प्रार्थना का आग्रह किया। मर्सिले में अपनी आगामी प्रेरित यात्रा की याद करते हुए पोप ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त लोगों और युद्ध से प्रभावित भूमि के सभी लोगों के प्रति अपना सामीप्य व्यक्त किया। पोप फ्रांसिस भूमध्य सागर सभा का समापन करने के लिए शुक्रवार और शनिवार को दक्षिणी फ्रांसीसी शहर मर्सिले की दो दिवसीय यात्रा करेंगे, जहां 17 से 24 सितंबर तक भूमध्य सागर क्षेत्र के धर्माध्यक्ष और युवा एक सभा में भाग ले रहे हैं। संत पापा ने बैठक के माध्यम से भाईचारे को बढ़ावा देने के एक अवसर के रूप में आगामी यात्रा की सराहना की, जिसमें क्षेत्र के प्रतिनिधि एकत्रित होंगे। इस महीने की शुरुआत में मंगोलिया की प्रेरित यात्रा के बाद 22 से 23 सितंबर की यात्रा पोप फ्रांसिस की विदेश में 44वीं प्रेरित यात्रा होगी। देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभा को एक सुंदर पहल के रूप में याद किया जो महत्वपूर्ण भूमध्य सागर शहरों के बीच अपना रास्ता बना रही है और जो शांति, सहयोग और समन्वय के रास्ते को बढ़ावा देने के लिए कलीसियाएं एवं नागरिक अधिकारियों को एक साथ ला रही है, जिसमें आप्रवासी समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संत पापा ने कहा, यह एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है जो आसान नहीं है, जैसा कि हम इन दिनों के समाचारों में देखते हैं, जिसका सामना एक साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा, यह सभी के भविष्य के लिए आवश्यक है, जो केवल तभी समृद्ध होगा जब यह भाईचारे पर आधारित होगा। मानवीय गरिमा और व्यक्तियों को पहले स्थान पर रखा जाएगा, विशेषकर सबसे जरूरतमंद लोगों को। संत पापा ने यूक्रेन के शहीद लोगों की याद की और युद्ध से तबाह हुए सभी देशों में शांति का आह्वान किया उन्होंने कहा, हम प्रताड़ित यूक्रेनी लोगों और सभी युद्धग्रस्त भूमियों में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति के लिए कई अपीलें की हैं। और जब से रूस ने अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण तेज किया है, लगातार शांति के लिए आह्वान करते रहे हैं। पोप ने लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिनिधि एवं आवश्यक सामग्रियां भेजी हैं। उन्होंने कार्डिनल मत्तेओ जुप्पी सहित अन्य प्रतिनिधियों को शांति की दिशा में काम करने के लिए भेजा है। इस महीने की शुरुआत में संत पापा ने यूक्रेनी ग्रीक कैथोलिक कलीसिया की धर्म सभा के सदस्यों से मुलाकात की और ख्रिस्तियों को आमंत्रित किया कि वे अक्टूबर माह को यूक्रेन में शांति और मेल मिलाप हेतु प्रार्थना करने के लिए समर्पित करें। और अंत में संत पापा ने इटली तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
प्रभु येसु मुक्तिदाता येसु दाता माफ करो
मुक्ति दाता माफ करो
क्षमा करो प्रभु येसु।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 18 सितंबर को वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में वाटिकन फार्मेसी की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके करीब 150 कर्मचारियों से मुलाकात की। संत पापा ने उनका सहृदय स्वागत किया और कहा, वाटिकन फार्मेसी की स्थापना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी संस्था ने संत पापा ग्रेगोरी 16वें के एक सपने को साकार किया, जो एक कैमेलडोलिस भिक्षु थे जो मठ से जुड़ी फार्मेसी के महत्व से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वाटिकन में एक फार्मेसी बनाने का काम संत जॉन ऑफ गॉड के हॉस्पिटलेटर धर्म संघ के सुपीरियर जनरल को सौंपा गया। वास्तव में धर्म संघ ने इस क्षेत्र में धार्मिक घराने की फार्मेसी के साथ एक लंबी परंपरा का दावा किया, जो कई स्थानों पर बाहरी लोगों के लिए भी सेवा प्रदान करती थी। इस प्रकार फाते बेने फ्रतेली के एक धर्म समाजी यूसेबियो फ्रामर को पहले फार्मासिस्ट के रूप में चुना गया और इस प्रकार 150 साल पहले यह अनोखी कहानी शुरू हुई। वाटिकन फार्मेसी न केवल वाटिकन के कर्मचारियों और वाटिकन सिटी के निवासियों पर ध्यान देता है, बल्कि उन लोगों पर भी जिन्हें विशेष दवाओं की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अन्यत्र मिलना मुश्किल होता है। इसके लिए संत पापा ने फाते बेने फ्रतेली के धर्म संघियों, आम सहयोगियों, फार्मासिस्टों और कर्मचारियों, गोदामों में काम करने वालों और सभी सहयोगियों को धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, आपकी व्यवसायिकता और समर्पण के लिए धन्यवाद। स्वागत और उपलब्धता की भावना के लिए भी जिसके साथ आप अपना कार्य करते हैं, जिसके लिए कभी कभी प्रयास की आवश्यकता होती है और जैसा कि विशेष रूप से महामारी के दौरान हुआ। संत पापा सभी फार्मासिस्टों के कठिन काम को देखते हैं, जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ता है, विशेष रूप से बुजुर्ग जिन्हें अक्सर आज भी उन्मत्त गति में न केवल दवा, ध्यान, एक मुस्कान की आवश्यकता होती है, बल्कि एक कान, आराम के शब्द की भी आवश्यकता होती है। संत पापा ने कहा, यह न भूले कानों की प्रेरिताई, सुनना, कभी कभी यह उबाऊ लगता है, लेकिन बोलने वाले के लिए यह आपके माध्यम से ईश्वर का प्यार है और फार्मासिस्ट यह करीबी और फैला हुआ हाथ है जो न केवल दवाएं देता है बल्कि साहस और निकटता का संचार करता है। इसके लिए आपको और सभी फार्मासिस्टों को धन्यवाद। यह आपकी नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन है। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 18 सितंबर को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में हार्ट ऑफ जीसस के रोगेशनिस्टों और दिव्य उत्साह की पुत्रियों की धर्म बहनों के साथ मुलाकात की, जो अपने धर्म समाज की महासभा में भाग लेने आए हुए हैं। संत पापा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, आपको समर्पण, करिश्माई पहचान, धार्मिक जीवन के मूलभूत पहलुओं जैसे विषयों को संबोधित करने का अवसर मिला है, जिनकी खोज के लिए प्रार्थना और साझा करने में सुनने की क्षमता की आवश्यकता होती है। आपके संस्थापक फ्रांस के संत हैबिनल की मूल प्रेरणा के प्रति वफादार रहने और साथ ही बदलती दुनिया की जरूरतों के प्रति चौकस रहने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस ने उनकी चौथी प्रतिज्ञा रोगेट अर्थात बुलाहट के लिए प्रार्थना पर विचार किया, जो कलीसिया में उनके विशिष्ट मिशन के मूल में है। संत पापा ने उनके संस्थापक संत हैबिनल का उदाहरण लेते हुए कहा कि संत हैबिनल जब पौत्र संस्कार के सामने प्रार्थना में लीन थे, तभी उन्हें पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित जीवन जीने का बुलावा मिला। संत पापा ने कहा कि वास्तव में जब कोई स्वयं को विनम्र भाव से ईश्वर के सामने रखता है, तो उसे अक्सर अपने जीवन के अर्थ की एक विशिष्ट समझ प्राप्त होती है। यह विश्वास योग्य और निरंतर प्रार्थना में है, विशेष रूप से आराधना में चीजें अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आती हैं। संत पापा ने प्रार्थना की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, प्रार्थना के बिना आप खड़े नहीं रह सकते, आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर दिन ईश्वर के साथ एक लंबा संवाद हो और हर महत्वपूर्ण क्षण, हर बैठक, हर निर्णय से पहले उनका आह्वान किया जाए। संत पापा ने कहा कि संत हैबिनल सुसमाचार के एक विशेष अंश से प्रेरित थे, जिसमें यीशु कहते हैं, फसल प्रचुर है लेकिन मजदूर कम, इसलिए फसल के स्वामी से प्रार्थना करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। संत हैबिनल ने भी यीशु की तरह शरीर और आत्मा में गरीब मानवता के लिए एक मार्मिक करुणा महसूस की और वे समझ गए कि बुलाहट के लिए प्रार्थना करना उसकी प्राथमिकता है। निश्चित रूप से ईश्वर को चरवाहों को भेजने के लिए मनाना नहीं, बल्कि खुद को अपने पैतृक और मातृ प्रेम की गहराई से अभिभूत होने देना है। प्रार्थना करके अपने बच्चों की जरूरत के प्रति संवेदनशील होना सीखें। इस प्रकार प्रार्थना से प्रेरित होकर ही संस्थापक संत हैबिनल ने सभी प्रेरितिक और धर्मार्थ गतिविधियों को करने के लिए यीशु के हृदय के रोगेशनिस्ट और दिव्य उत्साह की पुत्रियों के धर्म समाज की शुरुआत की। संत पापा ने कहा, आज कई युवाओं को ईश्वर बुलाते हैं और उन्हें विश्वसनीय गवाहों और मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। उन्हें प्यार के लिए बिताए गए जीवन की सुंदरता दिखाने के लिए, उन्हें हाँ कहने में मदद करने के लिए, धर्म संघीय बुलाहट के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। उधर यूक्रेन में शांति की तलाश हेतु संत पापा फ्रांसिस के विशेष दूत के रूप में कार्डिनल मतेओ मारिया जुप्पी बीजिंग की अपनी 3 दिवसीय मिशन यात्रा के बाद शुक्रवार को इटली लौट आए। टीवी दुए मिल्ला से बातें करते हुए कार्डिनल जुप्पी ने कहा कि उनके मिशन को चीनी सरकार से काफी ध्यान मिला है। कार्डिनल जुप्पी ने यूक्रेन के दूत के साथ भविष्य के लिए विचारों और दृष्टिकोणों के महत्वपूर्ण आदान प्रदान के साथ एक स्पष्ट चर्चा की बात की। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।